ये आकाशवाणी है, अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में शीर्ष पुलिस अधिकारियों और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। आज अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने पुलिस व्यवस्था से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों ने अपने क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था प्रबंधन की चुनौतियों से निपटने के बारे में प्रस्तुतियां दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज गुजरात के सूरत में बुलेट ट्रेन ट्रैक स्लैब निर्माण इकाई के संचालन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये देश में सबसे बड़ी ट्रेन ट्रैक स्लैब विनिर्माण इकाई है। श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले वर्षों में ये इकाई देश में भविष्य की विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के लिए बहुत लाभदायक होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में 50,000 से अधिक लाभार्थियों को 1,121 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण के स्वीकृति पत्र सौंपे। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया और किसान क्रेडिट कार्ड योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को ऋण वितरित किए। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगी। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 236वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान बोर्ड ने ईपीएफओ योगदान के संग्रहण के लिए सूचीबद्ध बैंकों की पात्रता को आसान बनाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया। नई पात्रता में भारतीय रिजर्व बैंक में सूचीबद्ध सभी बैंक योगदान के संग्रहण के पात्र होंगे। महाराष्ट्र में नवनिर्वाचित महायुति सरकार का बहुप्रतीक्षित शपथ ग्रहण समारोह बृहस्पतिवार को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। महाराष्ट्र में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इसकी जानकारी दी। महायुति गठबंधन में भाजपा, शिवसेना शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट शामिल है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान को जबरन वसूली के मामले और गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के साथ उसके कथित संबंधों के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान विधायक नरेश बालियान और गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच बातचीत का ऑडियो क्लिप मिलने के बाद गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने बताया कि बातचीत में कथित तौर पर व्यवसायियों से फिरौती की रकम इकट्ठा करने के बारे में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोधकर्ता डॉ पृथ्वीन्द्र मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि डॉ मुखर्जी बहुमुखी व्यक्तित्व थे जिन्होंने बौद्धिक जगत में मजबूत छाप छोड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि उनके कार्यों और रचनाओं की आने वाले कई वर्षों तक प्रशंसा होती रहेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विक्रम संपत की पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम का विमोचन किया। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि ये पुस्तक न केवल तेजी से आगे बढ़ने वाले जटिल युग की स्थितियों को दर्शाती है बल्कि राजनीति, रणनीति, प्रशासन, समाजशास्त्र और कूटनीति में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। डॉ जयशंकर ने कहा कि टीपू सुल्तान की प्रतिष्ठा प्रमुख व्यक्ति के रूप में है जिन्होंने भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशक नियंत्रण थोपने का विरोध किया था। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में स्थित चक्रवाती तूफान फेंजल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ गया है और पुदुचेरी से दक्षिण पूर्व में 80 किलोमीटर तथा चेन्नई के दक्षिण पूर्व में 90 किलोमीटर पर केंद्रित है। इस तूफान के पश्चिम की ओर बढ़ने की आशंका है तथा ये कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आज रात 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र तट को पार कर सकता है। लखनऊ में सैयद मोती अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने उन्नति हुड्डा को और लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के सोबोगावा को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।